प्यारे साथियों नमस्कार। आज 25 नवंबर 2016 है, दिन है शुक्रवार और आज के इस afeias.com के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और आज के मेरे इस स्वागत को मित्रों आप कल का भी यानी कि सैटरडे का भी स्वागत समझें और साथ ही साथ संडे यानी कि रविवार का भी स्वागत, यानी कि इस एक दिन में तीन दिन के स्वागत समाहित हैं। फ्रेंड्स, अब हम आते हैं लाइफ मैनेजमेंट पर और मैं एक बार फिर से अपने आप सभी प्रिय श्रोताओं को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि प्रेम पर जो मेरे लाइफ मैनेजमेंट दो लाइफ मैनेजमेंट आए ठीक इससे पहले, तो जो पहला जो मैं लेक्चर था उस पर मुझे आप सबसे बहुत अच्छी प्रतिक्रियाएं पढ़ने को मिली हैं। और मुझे जो जिस बात ने सबसे ज्यादा अपील किया वो ये कि कुछ स्टूडेंट्स ने तो अपनी समस्याओं को लिख कर भी भेजा है और उससे भी बड़ी बात सच पूछिए तो यह है कि उन्होंने ये तक बताया है कि अब कैसे उस लेक्चर को सुनने के बाद अब उन्हें उस समस्या से निजात मिल चुकी है। तो मित्रों, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और डेफिनेटली ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि वह आप सबको इसी तरह का विवेक प्रदान करे। मैं ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूं मित्रों, ज्ञान अलग है, विवेक अलग है। यहां जो काम आता है वो विवेक काम आता है, ज्ञान काम नहीं आते, पोथी पत्रे काम नहीं आते, किताबें काम नहीं आती, डिग्रियां काम नहीं आती। यहां ज्ञान काम आता है, विजडम काम आता है, जिसे हम हिंदी में विवेक कहते हैं। सच पूछे फ्रेंड्स, तो अगर कोई मुझसे पूछे कि लाइफ मैनेजमेंट के माध्यम से आप क्या करना चाहते हैं, तो मेरा बहुत छोटा सा और बहुत ही विनम्र उत्तर है कि मैं लोगों में एक विवेक पैदा करना चाहता हूं, अगर कर सकता हूं तो। मुझे नहीं मालूम कि वो कितना होगा, कितना नहीं, हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं। जैसे खेत, जो जमी किसान है जो अपने खेत को जोतता है और फिर बीज डाल देता है, अब आगे वर्षा के ऊपर है और दूसरी चीजों के ऊपर है, तो बस मैं अपना कर्म कर रहा हूं। लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि कुछ ना कुछ बात तो बन ही रही होगी और यदि विवेक जागृत हो जाए तो मुझे ऐसा लगता है मित्रों कि फिर जिंदगी में समस्याएं रह नहीं जाती। जिंदगी में मूलतः समस्याएं ही विवेक के सुषुप्त हो जाने के कारण है या विवेक के सो जाने के कारण है। और मुश्किल ये होती है कि जब हमारा अपना विवेक सो जाता है, ये बहुत ही खतरनाक बात है कि जब हमारा अपना विवेक सो जाता है तो हम दूसरों के विवेक से काम करने लगते हैं या दूसरों के ज्ञान से काम करने लगते हैं, दूसरों के सलाह से काम करने लगते हैं। देखिए, सलाह लेना, दूसरों से ज्ञान प्राप्त करना, दूसरों के विवेक को सुनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका उद्देश्य होना चाहिए कि हम अपने विवेक को जागृत करें। अगर ये सोता रह गया तो फिर दूसरों की चीजें आप पर उतना ज्यादा काम नहीं करेंगी, आप चाहे उसे कितना भी अप्लाई कर लें। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं एक इंटरेस्टिंग मेल के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं। दो तीन दिन पहले, तीन चार दिन पहले की बात होगी, मेरे पास इस तरह के भी मेल आते रहते हैं जो कम से कम अपनी भाषा और अपने प्रश्न सूचक अंदाज में ओठों पर एक हल्की सी मुस्कान तो बिखेरी देते हैं। उसमें मित्रों एक बड़ा अच्छा मेल आया, एक स्टूडेंट का मेल था कि सर, यहां बहुत से स्टूडेंट इस बात की चर्चा करते हैं कि अरे भोपाल क्या क्लास में जाना, और अगर वो इतने ही दमदार होते डॉक्टर अग्रवाल तो उन्होंने अपने बेटे को आईएएस बना दिया होता, तो इस बात की सर बहुत चर्चा है और लोगों को भरोसा नहीं है। ये पढ़ने के बाद मेरे ओंठों पर हंसी आई, मुस्कुराहट आई और मैंने ईश्वर का धन्यवाद दिया कि चलिए इस डायरेक्शन में भी कम से कम कुछ लोग तो सोच रहे हैं और वो भी लोग वही हैं जो मेरे अपने प्रिय हैं। अच्छी बात है। तो कबीर दास जी ने तो कहा ही था, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। बिना पानी और साबुन के ही ये जो निंदक लोग होते हैं आपके स्वभाव को कोमल बनाने लगते हैं। तो मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर मेरे स्वभाव को तुम और कोमल बनाते चले जाओ इन सब इस तरह की प्रतिक्रियाओं से। तो मित्रों, आप देखिए कि जैसे मान लीजिए कि आपसे किसी ने ये कहा या आपके दिमाग में ही ये सवाल उठा, सवाल उठना गलत नहीं है, सवाल तो उठने ही चाहिए। और एक सही सवाल हो सकता है, मतलब एक तार्किक सवाल हो सकता है कि भाई डॉक्टर अग्रवाल ने अपने बेटे को ही आईएएस क्यों नहीं बना दिया जबकि वो कह रहे हैं कि मैं दूसरों को आईएएस बनाऊंगा। आइए थोड़ा सा इस पर विवेक अप्लाई करते हैं, है ना। विवेक की अब चूंकि बात चल चुकी तो इस पर अप्लाई करते हैं। हालांकि मेरा इरादा आज इस विषय को लेने का नहीं था, लेकिन पता नहीं कैसे विवेक की बात आई तो अब शायद विवेक मेरे दिमाग में इसलिए भी बात घुस गई होगी दोस्तों कि आपको मालूम है कि विवेक की राय जो बहुत अच्छे ललित निबंधकार थे जिनका मैं फैन रहा हूं, जिनकी राइटिंग का और अपने कॉलेज लाइफ में भी मैंने उनको काफी पढ़ा है, वो परसों नहीं रहे थे। तो आज हिंदुस्तान में, मैं दैनिक हिंदुस्तान में उनके ऊपर एक बहुत अच्छा प्यारा सा लेख आया है तो वो मैंने बड़े ध्यान से पढ़ा, तो हो सकता है इसलिए मेरे दिमाग में ये विवेक कुछ ज्यादा ही आज बैठ गया है। खैर मित्रों, सवाल उठा है, सवाल उठना बिल्कुल मौजू है, सही है। अब हम इसका थोड़ा सा इस पर विवेक अप्लाई करके इसका मूल्यांकन करते हैं। पहली बात तो यह है मित्रों कि क्या मैं कभी गारंटी देता हूं कि मैं आपको आईएएस बना दूंगा या जो मुझे सुन रहे हैं उनको आईएएस बना दूंगा या मेरी क्लास में जो लोग भी आएंगे वो सबके सब आईएएस बन जाएंगे। मैं कभी नहीं कहता। बार बार मैं ये कहता हूं कि मैं आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा हूं, आपको उसके लायक बना रहा हूं। चलना तो आपको ही है, मैं आपको दिशा बता रहा हूं। आपके बदले में मैं चल तो नहीं सकता, मैं गारंटी भी नहीं दे सकता कि आपको कंधे पर बिठा करके मैं वहां तक पहुंचा दूंगा। नॉट एट ऑल, मुझे ये भ्रम है ही नहीं। तो पहली बात तो ये, यही अपने आप में गलत है। दूसरी बात, इसके माध्यम से दोस्तों मैं आपको लाइफ के दो तीन सिद्धांत बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि मैं जिस पृष्ठभूमि से था तो या जिस युग में जिस समय था तो मेरे लिए शायद आईएएस एक बहुत बड़ी चीज हो सकती थी और मैंने उसके लिए कोशिश की और मुझे वह मिल गई मेरे लिए। अब सवाल यह है कि क्या मेरे बेटे के लिए भी वह चीज उतनी ही कीमती होगी, उतनी ही कीमती होगी। चलिए मैं थोड़ी सी यहां जिस स्टूडेंट ने ये प्रश्न किया है उसको मैं थोड़ा सा बताना भी चाहूंगा कि जो मेरा बेटा है वो वर्ल्ड लेवल का चेस प्लेयर रहा है। इंडिया का जो बेस्ट कॉलेज है जिसे आप SRCC कहते हैं, श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स, जब एडमिशन्स होते हैं तब आपको सुनने को मिलता होगा कि 98% वालों को वहां एडमिशन मिल पाता है, उस कॉलेज से पढ़ा हुआ है। नहीं, मैं थोड़ी सी पृष्ठभूमि बता रहा हूं। मैंने उससे कहा था इनफैक्ट कि तुमको सिविल सर्विस में अपीयर होना चाहिए, उसने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। शुरू से ही वह सिविल सर्विस के पक्ष में नहीं था अपनी लाइफ के बारे में। और बाद में जब थोड़ा सा बड़ा हो गया, मैं सर्विस छोड़ चुका था, तो जब मैंने उससे यही प्रश्न किया कि भाई तुम तैयारी करो एक दो बार ट्राई करके तो देखो, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, तो उसने मुझसे एक प्रश्न किया था जिसका मैं जवाब नहीं दे पाया। उसने प्रश्न किया कि पापा आप हुए और आपने छोड़ दिया और आपने जिसको छोड़ दिया है उसको आप मुझे पाने के लिए कह रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आ रही है बात कुछ। इनफैक्ट उसके कभी ग्लैमर ही नहीं रहा इसका। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्विस ग्लैमरस नहीं है, देखिए मेरी बात को गलत तरीके से मत लीजिएगा, यहां जीवन को समझने की कोशिश कीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर्विस ग्लैमरस नहीं है, इसके अपने ग्लैमर हैं, लेकिन चूंकि वह उसमें रहा, उसमें उसको उसने देखा समझा तो उसको नहीं लगा, उसको लाइफ में कुछ और दूसरी चीजें ग्लैमरस लग रही हैं या अपने योग्य लग रही हैं या उसके प्रति आकर्षण है। तो यहां जीवन के दो सिद्धांत दिखाई दे रहे हैं दोस्तों। पहला तो यह है, इसको समझने की कोशिश कीजिए, हर के लिए हर चीज समान महत्व की नहीं होती। मेरे लिए जो चीज बहुत मायने रख सकती है वह आपके लिए दो कौड़ी की हो सकती है। जैसे मुझे अगर आज एक सप्ताह 10 दिन गांव में रहने का मौका मिले तो मुझे ऐसा लगेगा कि जैसे मैं 10 दिन स्वर्ग में बिता रहा हूं, लेकिन जो गांव में ऑलरेडी रह रहा है वो उस शहर में अगर उसको आने का मौका मिल जाए, ठीक ठाक व्यवस्था हो जाए, तो उसको लगेगा कि यार चलो बहुत अच्छी बात हुई। तो उसके लिए गांव का महत्व नहीं है, मेरे लिए गांव का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि मैं अभी रह नहीं रहा हूं, पहले रहा था, वो नहीं रहा है शहर में, तो उसके लिए महत्व हो सकता है। तो पहला सिद्धांत की जो एक ही चीज है वो सबके लिए समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं होती, कीमती नहीं होती। दूसरा जो सिद्धांत है फ्रेंड्स वो ये कि जब आपको कोई चीज मिल जाती है, आप भी आगे चलकर महसूस करेंगे, आप सब महसूस करेंगे, या अब तक आपने काफी कुछ महसूस कर भी लिया होगा कि आप किसी चीज को चाहते थे, वह चीज आपको मिल गई और मिलने के बाद फिर चाहत कम हो गई। हो सकता है कि चाहत इतनी कम होती चली गई, इतनी कम होती चली गई कि चाहत फिर खत्म ही हो गई। और खत्म होते होते एक दिन यही स्थिति आई कि आपने उसे छोड़ करके किसी दूसरे को चाहना शुरू कर दिया, दूसरे काम में लग गए, दूसरे उद्देश्य में लग गए। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। हर्षमंदर जी का नाम आप लोग पढ़ते होंगे, हिंदू में वो अक्सर आर्टिकल्स लिखते हैं, मैं कभी कभी प्रोवाइड भी करता हूं। वो मध्य प्रदेश कैडर के आईएएस ऑफिसर्स थे, उन्होंने कुछ साल नौकरी की, इसके बाद सर्विस छोड़ दी। उस समय डायरेक्टर लेवल पे थे, मेरे समझ से 14-15 साल की नौकरी की, इसके बाद उन्होंने सर्विस छोड़ दी। और इसके बाद कर क्या रहे, एनजीओ से जुड़ गए। सोचिए, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ से जुड़ गए, समाज सेवा से जुड़ गए। अब जिस समय तैयारी की होगी दोस्तों, मेहनत तो बहुत लगती है, उसका ग्लैमर भी रहता है, और सच पूछे तो वही ग्लैमर तो प्रेरणा का भी काम करता है। वही प्रेरणा होती है कि नहीं, हमें पाना है, कुछ करना है, तो उसमें लगे रहे। मिल गई, 15 साल तक किया, देखा तो दूसरी चीज के प्रति आकर्षण हो गया कि नहीं यार, यहां ये करना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसमें लग गए। और आगे चलकर हो सकता है कि कुछ और चीज अलग दिखाई दे जाए तो उसमें लग जाए। तो मित्रों, मिलने के बाद हर चीज का महत्व कम हो जाता है। और तीसरी और आखिरी बात मैं कहना चाहूंगा, जितना समय मुझे इजाजत दे रहा है उसके हिसाब से फ्रेंड्स, कि समय के साथ चीजों में बदलाव भी होते चले जाते हैं। मुझे वो चीज नहीं मिली है, मान लीजिए मुझे वो चीज नहीं मिली। अब आप देखिए कि सन 2000 के आसपास इंजीनियरिंग का जितना ग्लैमर था, अब तो इंजीनियरिंग का उतना ग्लैमर नहीं रह गया है। क्यों? मतलब वो ज्यों का त्यों है, समय के साथ उसका ग्लैमर बदल जाता है, समय भी उसके महत्व को कम अधिक कर देती है। तो ये जो तीन बातें हैं फ्रेंड्स, जब हम किसी भी चीज का इस रूप में, इस तरह के प्रश्नों का जब हम विश्लेषण करें, तो अपने फिर विवेक को खोलें। दूसरा तो कहने वाला कहेगा, आपके दिमाग में भी क्वेश्चन आएंगे, न तो कहने वाला गलत है, न आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है वो गलत है, कहीं कोई गलती नहीं है। गलती तब होती है जब हम उसको बिना जांचे परखे ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब है कि हमने अपने विवेक को वहां अप्लाई नहीं किया है। मित्रों, इससे पहले के लेक्चर्स में प्रेम के बारे में भी मैंने जो बातें आपसे शेयर की हैं, आप ध्यान दीजिए, मैंने पहले ही लेक्चर में कहा था प्रेम की समझ, और मेरे जो पुस्तक है उसका शीर्षक ही है प्रेम की समझ। क्योंकि जैसे ही समझ आ जाती है, सच पूछे तो संकट खत्म हो जाते हैं। एक छोटा सा बच्चा अगर सांप को चलते हुए देखे तो वो उसे पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि सांप बड़ा प्यारा होता है, रंग बिरंगा होता है, और बड़ा लहरा करके चलता है तो खूबसूरत लगता है। जमीन पर जब वो चलता है तो आप देखिए, हमें तो भय इसलिए लगता है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि ये जहरीला है, लेकिन बच्चे को तो नहीं मालूम है कि ये जहरीला है, उसे पकड़ने के लिए मचलता है वो, लेकिन हम नहीं मचलते, क्योंकि हम जानते हैं कि सांप क्या है। सांप की समझ हम में आ गई है, उस बच्चे में समझ नहीं है। तो जैसे ही हम समझ जाते हैं और समझते हैं विवेक के जरिए, किताबों के जरिए नहीं, वैसे ही सच पूछे तो उससे होने वाले जो नुकसान है उससे बच जाते हैं, और इनफैक्ट उससे भी बड़ी बात है कि उससे जो फायदे मिल सकते हैं हम उस फायदे को ले सकते हैं। तो मित्रों, आज के लाइफ मैनेजमेंट में बस इतना ही। आपको मालूम है कल सैटरडे और संडे है, इसलिए इन दो दिनों के बिहाव पर मैंने पहले ही आप लोगों का स्वागत करना ठीक समझा। तो मित्रों, इसी के साथ ही अब मैं इजाजत चाहूंगा, और सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।